ओम शांति। अभी अभी बाबा ने संगम युग की बहुत सुंदर महिमा सुनाई। संगम युग प्राप्तियों का युग, और इन प्राप्तियों में से एक प्राप्ति है बाबा के नए परिवार से मिलना, प्रभु परिवार के बीच आना, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की सभा में आना, महान तपस्वी आत्माओं से मिलना। तो हम समझते हैं आज हमारे लिए ये भाग्य का दिन है, जो आज हम दिव्या बहन जी की प्रेरणा से, बिंदु बहन जी की प्रेरणा से, बाबा तो है ही, आप सबके बीच में कुछ समय के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत सुंदर बात है बाबा ने आज की मुरली में बताई है, संगम युग प्राप्तियों का युग है, मेहनत से मुक्त होने का युग है, द्वापर कलयुग मेहनत का युग है और संगम प्राप्तियों का युग है, प्रत्यक्ष फल खाने का युग है। चार कारण बताए हैं बाबा ने, जिस वजह से ये फल आत्माएं नहीं खा पाती, और चार और कारण बताए हैं जिस वजह से मेहनत करनी पड़ती है। फल न खाने का सबसे पहला कारण बताया, बीज को शक्तिशाली नहीं बनाया, दूसरा भूमि, तीसरा हम खुद उसको खा लेते हैं, चौथा माया रूपी पंछी उसे खा लेते हैं। सभी पुरुषार्थ का जो स्थान है, उगम स्थान, वह संकल्प है। बाबा ने कहा सबसे पहले संकल्प और बीज को शक्तिशाली बनाओ, जब संकल्प और बीज शक्तिशाली होगा तो स्वतः ही वो फल खा सकेंगे। बीज शक्तिशाली है और दूसरा है भूमि अर्थात वातावरण। किस वातावरण में हम रहते हैं, वो मन का वातावरण, मन का मौसम, या फिर बाहर का मौसम। बाहर मौसम में कितनी भी हलचल हो, परंतु अंदर स्थिर अचल रूप, बाहर की हलचल अंतस में हलचल न उत्पन्न करे। तो दूसरा जो काम करना है वो वातावरण पर अर्थात भूमि पर। बीज बहुत शक्तिशाली है, परंतु वो बीज यदि जमीन पर पड़ जाए पथरीली, तो झाड़ नहीं उगेगा। रेत पर यदि उगे जाए तो नहीं, बीज उपजाऊ जमीन पर गिरना चाहिए। उस जमीन को बनाने दायित्व हमारा है। जमीन अर्थात वायुमंडल, वो हमारे घर का वायुमंडल है, ऑफिस का वायुमंडल है, या सेवा केंद्र का वायुमंडल है। एक एक ब्राह्मण आत्मा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सेवा केंद्र का और अपने घर का वायुमंडल ऐसा बनाए, शक्तिशाली, पावरफुल, ताकि यहाँ पर कोई भी आत्मा जो बाहर से आ जाए, वो आते ही उसको अनुभव हो जाए कि बस यही है और यही है। बाबा जादू का शब्द है, जैसे ही कोई आए उसको जादू लग जाए। तीसरा बताया, हम खुद ही फल को खा लेते हैं, अर्थात मैंने किया ये भाव। जैसे ही सेवाएं की विस्तार किया, सेवाओं के निमित्त बने, पर जैसे ही ये भाव आता है कि मैं कर रहा हूं, फल खा लिया। अच्छा, क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे? संगम पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहा है। जब जब आत्मा में यह भाव आएगा कि मैं कर रहा हूं, आत्मा गिरेगी। जब जब विशेषताओं का अभिमान हो जाएगा, तब तब जिसने विशेषता दी है हो सकता है वो विशेषता को छीन भी सकता है। भगवान ने कहा विशेषताओं के बीज को शक्तियों से सींच तो फलदायक होगा। जो विशेषताएं हमें मिली है उसका अभिमान, जो सेवाएं हमें मिली है उसका अभिमान, किसने दी वो सेवा, वो चाहे तो किसी और को भी दे सकता था। मोहम्मद रफी की कही हुई एक बात हमें हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा कि यदि खुदा चाहता तो यह आवाज कोई और हलक में कंठ में डाल सकता है, पर उसने ये आवाज मेरे गले में डाली। मेरी महिमा नहीं, महिमा उसकी है, उसने निमित्त बनाया। वो चाहता था तो हमसे क्या योग्य लोग नहीं थे इस धरती पर, हमसे भी अच्छे हुनरवादे शक्तिशाली बुद्धिमान लोग थे, परंतु इतनी हजारों की सभाओं में सभा से उसने हमें चुना, ये हमारा भाग्य है। ये सेवा वो किसी और को भी दे सकता था, पर हमें दी गई सेवा ये भाग्य है। तो जैसे ही ये भाव आएगा मैंने किया, आत्मा गिरेगी नीचे। संगम पर जो कुछ हो रहा है वो करा रहा है, हम केवल नल हैं। ऊपर टंकी है पानी की, वो पानी इस नल से बह रहा है। अगर नल को अभिमान हो जाए कि मैं देखो कितना पानी बहाता हूं, तो क्या कहेंगे दूसरे भी नल है, हो सकता है इस नल से बंद हो जाए और वहां से बहना चालू हो, फिर क्या करोगे उदास दुखी। तो चाहे संगम युग पर हम जो भी करें, ये भाव हो कि भगवान ने कराया। एक अव्यक्त संदेश है गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें बाबा ने गुलजार दादी को इमर्ज किया, प्रकाश में दादी जी को इमर्ज किया, और बाबा ने कहा प्रकाश में दादी से, ये गुलजार दादी बताया कि दादी आपने कितनी सेवाएं की, आपने कितना विस्तार किया यज्ञ का, भगवान महिमा कर रहे हैं दादी जी की, दादी जी सुन रहे हैं। और दादी ने अंत में कहा एक लाइन, बाबा दादी नहीं आप, हम कौन है कुछ करने वाले, रचयिता वो है वो करा रहा है, कठपुतलिया है नाच रही है, तो किस बात का हम, किस बात का हम कहा कि मैंने ये कर दिया। महाभारत में दिखाया है पांडवों की स्थिति, अर्जुन आ रहा है आबू पर्वत के, वहां से उसको भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर अपने राज्य में घूम रहा है, वहां पर कुत्ते भौंक रहे हैं, घरों पे ताले लग रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, उसको आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है, मैं धर्मराज और इस राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ। और उधर से संदेश आता है श्री कृष्ण तो अब तक जो कुछ पांडवों की शक्ति थी वो उसके वजह से थी, पांडव पति के वजह से थी। जैसे ही पांडव पति चला गया, पांडवों का जो सूक्ष्म अहंकार था वो भी खत्म हो गया। तब उन्हें पता चला कि हम जो कुछ कर रहे थे उसकी पावर थी, उसकी शक्ति थी, उसका वो सामर्थ्य था। तो इस ब्राह्मण जीवन में ये कहना कि ये मैंने किया। अब एक दूसरी अवस्था है जिसमें सभी ब्राह्मण आत्मा कहते हैं हम निमित्त, परंतु ये निमित्त हूं कहना भी निमित्त मात्र नहीं हो जाए। घर में रहा हूं, अंदर अहंकार भरा हुआ है और अंदर से लेप छेप मैं निमित्त हूं, अंदर से मैं परिपक्व हो रहा हूं, बाहर से ब्रह्मा को मोदी, ये ना निमित्त का दिखावा ना। मम्मा डेढ़ मास तक बैंगलोर की ढेर सारी सेवाएं की, डेढ़ मास में वापस लौट के आई। मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवाएं कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, दैट्स इट। कोई वर्णन नहीं उसका, ऐसी थी वैसी थी। वो तो बाद में उस भाई ने बताया जो साथ में था, इतनी सारी सेवाएं मम्मा करके आई, परंतु मम्मा के मुख से मैंने ये किया, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं, ये करती हूं, वो करती हूं, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। ऐसी थी सेवा, अच्छी थी। जहां जहां दिखावा होगा, जहां जहां विदंब होगा, वहां वहां आडंबर होगा, और आत्मा अपनी ऊंची स्थिति से, सूक्ष्म रीति से गिर जाए। तो तीसरा कारण है फल न खाने का, मैंने किया, ये फल को कम कर देता है। और चौथा है माया का पंची, अर्थात समस्या है विघ्न, वातावरण, मनमत, परम, ये सब है माया के पंची। सेवाएं कर रहे हैं, परंतु उस सेवाओं में इतना प्रचिंतन हो रहा है कि टकराव हो रहा है आत्माओं के बीच, दो आत्माओं के संस्कार टकरा रहे हैं, विचार टकरा रहे हैं, सेवाएं टकरा रही है। क्या ऐसी सेवा फलदायक होगी? उस श्रीमत में मिक्सचर हो रहा है मनमत का और परमत का। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है छाट लेना, ये मनमत, ये श्रीमत, ये परमत। जिसने ये कला सीखी वो सफल। तो ये चार कारण है। पहला कारण, बीज शक्तिशाली नहीं, बीज को शक्तिशाली बना दो, अर्थात संकल्प को शक्तिशाली बना दो। दूसरा कारण, वायुमंडल को शक्तिशाली बना दो, अर्थात भूमि को शक्तिशाली बना दो। तीसरा कारण, मैं विलीन, तपस्या अर्थात मैं का लुप्त हो जाना। नहीं तो भक्ति मार्ग में कहावत है, अज्ञान अंधकार है परंतु ज्ञान महाअंधकार है। वो ज्ञान जो अहंकार को लाए, महाअंधकार है। पर ऐसा ही बनना होगा, नहीं कभी अभिमान भी से। यहां हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा। ऐसा प्रिय जीवन जिसमें अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, ज्ञान का भी अभिमान नहीं कि हम ज्ञानी हैं और वो अज्ञानी है, हम बीके हैं और वो नॉन बीके, हम कौन है उसके मस्तक पर स्टैंप लगाने वाले की ये नॉन बीके, क्या हम इसकी गारंटी करते हैं कि वो ज्ञान में कभी ना आए? शब्द ही शायद गलत है, नॉन बीके। भावी ब्राह्मण आत्मा, भावी होवनहार देवता है, ये चार कारण है बीच फलदायक ना होने के। मेहनत के चार कारण बताए कि संगम युग सहज प्राप्ति का युग है। दिल वाला बाप, बेहद का बाप, बड़ी दिल, प्राप्त दिल, वरदान है, वरता है, सब कुछ है, फिर भी मेहनत क्यों? चार कारण। सबसे पहला कारण आलस और अवेलापन। जन्म जन्म का आलस सूक्ष्म रीति से उसने भरा है। आलस अर्थात वो नहीं कि हम बेड पर सोए पड़े, आलस अर्थात जागरण की कमी, आलस अर्थात ये कमी कि ये युग कौन सा चल रहा है, ये तीव्र पुरुषार्थ का युग चल रहा है, समय अंतिम सांसें ले रहा है, भगवान अब आ नहीं, अब वो जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? या वो सारी अव्यक्तवाणी हमारी पड़के हो गई जो 69 से अब तक बही, वो अव्यक्त प्रवाह जो बाहर, जो हम शांति से बैठे हुए हैं, क्या ज्ञान के सारे राजों को, ज्ञान के सारे रहस्यों को, योग की उस गहराई को हमने छुआ है और हम शांति से बैठे हैं, और अपने सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी कि हम बहुत सेवाएं कर रहे हैं, क्या सेवाएं हम कर रहे हैं? दादी जान की 1974 में लंदन पहुंची, एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा था, उसी दरवाजे को अपना बिस्तर बनाया, अपेक्षा था, जो रात में बिस्तर बन जाता था और दिन में संगली। अब तो जो सम्मान और स्थिति प्राप्त है वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे गहरी तपस्या है, साधना है। क्या ऐसे वैराग से और ऐसी साधना से, ऐसे धड़कती हुई साधना से, वैराग से हमारा जीवन उत्प्रोत है? यदि नहीं अर्थात हम बेहोशी में है, यदि नहीं तो अर्थ हम आलस में है और अवेलेबल में है। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण, स्मृति स्वरूप के किले में नहीं रहती है। क्या कहा? स्मृति स्वरूप के किले के अंदर रहो। किले के बाहर गए, विस्मृति में गए, भूल गए। अमृत वेला याद है, क्लास में याद है, क्लास से बाहर और जैसे ही घर गए और जैसे ऑफिस में गए और जैसे ही अपने काम काज में गए, बाबा पता नहीं कहाँ चला गया, विस्मृत हो गया, भूल गया। अर्थात इस किले से हम बाहर गए और जहां विस्मृति होगी वहां पाप है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, स्मृति अर्थात पुण्य, विस्मृति अर्थात पाप। सिंपल परिभाषा है पाप और पुण्य की। जब जब हम उसको भूलेंगे पाप ही होंगे, और फिर पश्चाताप, ये मुझसे करना नहीं चाहिए थे पर हो गया। और फिर बाबा को लेटर, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा 1974, टेंथ में 1974, 3P, पाप करना, पश्चाताप करना और माफी मांगना। पाप, पश्चाताप और पार्डन, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना दे। बार बार पाप करो, बार बार पश्चाताप करो और फिर बार बार माफी मांगो और बार बार बाबा को लेटर लिखो कि बाबा ये नहीं करना चाहते थे हो गया, ये नहीं करना चाहते थे हो गया। कब तक ये खेल चलता रहेगा? स्मृति स्वरूप के किले के अंदर रहना, उस किले में रहना जहां दूसरी आत्माएं स्मृति स्वरूप है, ऐसी आत्माओं का संग करना जो स्मृति स्वरूप है, ऐसी आत्माओं का संग करना जो तीव्र पुरुषार्थ है, सारी बाजी संकल्प की है। मुक्ति में आया एक लाइन आज, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पता नहीं क्यों कहोगे तो विघ्न आएंगे। ये विघ्न क्यों है? आएंगे। सोचो मैं गणेश हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, यह विश्वास। पता नहीं अर्थात विश्वास नहीं, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो पूछता है क्या तुम्हें, तेरा मुझ में विश्वास है? हाँ, यदि है तो दवाई असर करेगी, नहीं तो दवाई नहीं असर करेगी। तीसरा कारण मेहनत का। खिड़की दरवाजा इस किले का खुला रखा है, अर्थात किसी शक्ति की कमी है, कमजोरी। वो कौन सी कमी है? ढूंढना है हरेक को स्वयं। सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं परंतु एक कमी जरूर है। कौन सी वो कमी है? कौन सा वो संस्कार है? कौन सी वो आदत है? कौन सी वो स्मृति है? कौन से वो भोग है? कौन सी वो उत्तेजना है? कौन सी वो वासना है? कौन से वो पैशन है? कौन सी वो डिजायर है? कौन से वो ट्रिगर्स है? टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, क्या है? व्यक्ति है, संबंध है, पास्ट की यादें है, क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड डिस्ट्रॉय। मेरे जीवन में ये बाधा है। ये तीसरा कारण। और चौथा कारण बाबा ने बताया, जबरदस्ती चल रहे, मजबूरी से चल रहे, दिखावे के लिए चल रही है। ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा? लोकलाज की चिंता है। नियम पर तो चल रहे, श्रीमत पर तो चल रहे, परंतु मजबूरी से, दिखावे से, जबरदस्ती से, अंदर से इच्छा नहीं। अध्यात्म अर्थात स्वस्पूर्ण, तपस्या अर्थात स्वस्पूर्ण। तो ऐसे ये चार कारण बताए फल न खाने के, और चार कारण बताए मेहनत के। एक लास्ट बात आपको बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संकल्प सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे। संकल्प लिया मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं गणेश हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मौज में रहने वाली आत्मा हूँ, डबल लाइफ हूँ, सफलता का सितारा हूँ, विशेषता के बीज को सींचने वाली आत्मा हूँ। परंतु अवचेतन मन तक कैसे जाए? एक विधि है योग निद्रा। हमारा अवचेतन मन दो समय एक्टिव होता है, एक अमृत वेला और एक रात को सोते समय। योग निद्रा अर्थात ऐसी नींद कि जब हम उससे उठे तो फ्रेश महसूस हो। 45 मिनट की योग निद्रा अर्थात 3 घंटे की नींद। योग निद्रा पर बहुत से प्रयोग किए गए। एक भारत का स्वामी योगी विदेश गया इटली में। उसे इटालियन भाषा नहीं आती थी। उसने भाषण इंग्लिश में लिखा, एक स्टूडेंट को दिया और वो सो गए योग निद्रा। और उस स्टूडेंट ने वो भाषण इटालियन में पढ़ा और इन्होंने नींद में सुना, उठे और फिर सारी सभा के सामने इटालियन भाषण में वो भाषण दिया। योग निद्रा, हर एक को एक्सप्लोर करना है व्हाट इज योग निद्रा। उसकी 8 स्टेजेस है। सबसे पहले है शवासन में लेट जाना। रात में सोते हैं तो ऐसे नहीं सोना दिखे कि कोई योगी सो रहा है। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन। रात को सोते समय हमारे पास 2 ही घंटे हैं। हम रात को 12 बजे सो रहे हैं और हमें 3 बजे उठना है अमृत वेले के लिए। 3 घंटे में 6 घंटे की नींद करनी है। योगी अर्थात निद्राजीत। निद्राजीत अर्थात ये नहीं कि जबरदस्ती नींद कम कर दो और रात दिन भर सोते रहो। कम नींद परंतु शक्तिशाली नींद। क्योंकि व्यक्ति अगर 6 घंटा सोता है तो उसमें आधा समय तो वेस्ट करता है ड्रीम्स में। रेस्टफुल स्लीप उसमें 2 घंटे होती है उसकी। योग निद्रा अर्थात सोते समय पैर थोड़े बाजू में, हाथ थोड़े बाजू में, जैसे शवासन। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप संकल्प। सोते सोते संकल्प धारण करना एक, क्योंकि ये समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सेकंड स्टेप एक शक्तिशाली संकल्प। थर्ड स्टेप रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को संपूर्ण शरीर में घुमाना, एक एक अंग को देखना। पैर की उंगलियां रिलैक्स, पिंडलियां रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, जांघे रिलैक्स, नीचे के दोनों पैर रिलैक्स, फिर हाथ, फिर आंख, नाक, मुंह, पूरा शरीर रिलैक्स। चेतना को घुमाया जा रहा है पूरा। फोर्थ स्टेप ब्रेथ कंट्रोल। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इस पर ध्यान। अगली स्टेप विजुअलाइजेशन। एक पिक्चर क्रिएट करना, जो बनना है उसका पिक्चर क्रिएट करना। फरिश्ता बनना है उसका। यदि हमें क्रोध आता है तो अपने आप को देखना, मैं ऐसी दिनचर्या बिता रहा हूँ जिसमें कोई क्रोध नहीं है। यदि उत्तेजनाएं हैं, हरि का संस्कार है, हड़बड़ी का संस्कार है, बाबा ने कहा धमाल, देखना मैं शांत स्वरूप हूँ। चारों तरफ हलचल चल रही है, भूकंप और बहुत सारी आपदाएं हैं, परंतु मैं स्थिर बैठा हूँ। मन की आंखों से मानस चित्र बनाना विजुअलाइजेशन। अगली स्टेज और आगे अपोजिट डिटैच हो जाना सोते सोते। ये हम कब कर रहे हैं? रात को बिस्तर पर लेटते समय डिटैच होकर देखना बहुत सारी चीजों को जो अपोजिट चीजें हैं। फिर वापस संकल्प, मैं महानात्मा हूं। वो संकल्प को अंदर 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 जाने देना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं सोते समय। और लास्ट में सारी चेतना को वापस इकट्ठा करना। ये जो अवस्था है इसको कहा जाता है योग निद्रा। ब्रह्मा बाबा रात को सोए हुए हैं, कोई बच्ची आ गई तो बाबा कहते बच्चे कुछ चाहिए? अरे सोए नहीं क्या? जैसे जाग ही रहे। योगी योग निद्रा करता है, नींद नहीं करता है कभी। रात को सोते समय ऐसे सोना कि 2 घंटे के बाद उठे हो तो लगे कि एकदम फ्रेश, पूरा हो गए, नींद का कोटा पूरा हो गया। और काम हमें बहुत करने हैं। आधा समय ब्राह्मणों का नींद में जा रहा है, और यदि जिसको अनिद्रा है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए भी इलाज के रूप में योग निद्रा है। और योग निद्रा विधि है संकल्प रूपी बीज को अंदर समाने। तो सबने आज से सोना नहीं है, क्या करेंगे? योग निद्रा, उसकी रेडीमेड कॉमेंट्रीज मिलेगी आपको, रिलैक्सेशन की कॉमेंट्री, रिलैक्स होते 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 सोना, और जब उठेंगे तरोताजा, फिर वो भाव नहीं रहेगा कि सारे दिन भर अरे मेरी नींद कम हुई, मेरी नींद कम हुई, मेरी नींद कम हुई, मेरी नींद कम हुई, सेवाएं बहुत थी, नींद कम हुई। नींद कम हुई नहीं, हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी संकल्प की 2 बजे 2 घंटे के बाद मैं उठाऊंगा, परंतु पूरी नींद पूरी कर ली। इन 45 मिनट्स यू विल गेट 3 आवर्स ऑफ स्लीप। सो एक्सप्लोर व्हाट इज योग निद्रा।